ओम शांति। हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि महाशिवरात्रि पर्व भी हमारे सामने है और बाबा भी हम सभी बच्चों से समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ की आशाएं रखता है। तो सर्वप्रथम हमारे बीच बैतूल सेवा केंद्र के संपर्क में आमला उप सेवा केंद्र है, तो वहां से हिमलता दीदी जी हमारे बीच में है। हम सभी एक हाथ की ताली द्वारा उनका सम्मान करेंगे। आप 22 साल से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और 15 साल से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। तो हम सभी दीदी जी से सुनेंगे वर्तमान समय हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे लाए। ओम शांति।
ओम शांति। सभी दिल से कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आप सभी को पता हो कि कल क्या है, क्या है कल? बाबा का जन्मदिन। सिर्फ बाबा का, बाबा के साथ साथ हम बच्चों का भी बर्थडे है। तो जैसे देखो दुनिया के अंदर भी कहते हैं कि जन्मदिन जब आता है तो जन्मदिन में कुछ ना कुछ गिफ्ट दी जाती है, देते हैं ना। तो कल भी बाबा का बर्थडे मनाएंगे, बाबा भी आएंगे कल, अव्यक्त बाप दादा। कई समझते अभी तो बाबा आ ही नहीं रहे हैं, है ना। इसलिए देखो पहले का जो पुरुषार्थ था और आज के पुरुषार्थ में कुछ अंतर है, है अंतर। बाबा मिलन के लिए पहले आते थे 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले, तो कितनी गहन तपस्या होती थी, गेट से बाहर नहीं जाते थे 3 दिन पहले। और आज का समय, आज का समय क्या है? मिलन है या मेला है? है क्या? है प्रभु मिलन या मेला? मेला। तपस्या करने वाले भी कुछ आत्माएं, लेकिन कुछ परसेंट है ना। तो देखो समय अनुसार धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, मिलन की बजाय सिर्फ मेला रह गया। और बाबा ने कहा कि पहले भी बाबा ने अव्यक्त पालना के 50 वर्ष दिए और आज भी बाबा अव्यक्त रूप से हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में अगर बाबा से अनुभव करना चाहते हो, अव्यक्त मिलन मनाना चाहते हो, तो अपनी स्थिति को भी कैसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा अव्यक्त बनाना, ऊंची स्थिति बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए 4 दिन पहले, इसलिए तो आते 4-5 दिन पहले की आकर के कुछ तपस्या करे। और तपस्या करके क्या करे, बाबा के साथ का अनुभव करे, है ना। बाबा के, जब बाबा हमसे मिलन मनाने आए तो हम कुछ वरदानों से, शक्तियों से अपने आप को भरपूर करके कुछ लेकर के जाए अनुभव अपने साथ में। लेकिन समय अनुसार देखा जा रहा है कि बाबा कहते ना, जो वारिस क्वालिटी की आत्मा निकलने वाली थी वो तो पहले ही निकल गई, अभी कौन सी आत्माएं निकल रही है? प्रजा क्वालिटी की, बहुत कम वारिस क्वालिटी के होंगे। तो बाबा भी समय प्रति समय, वैसे भी बाबा ने 2018 को क्या टाइटल दिया है, समाप्ति वर्ष। तो 2018 ही समाप्ति था या 19-20 भी है, हो गई ना समाप्ति वर्ष। तो बाबा कहते समाप्ति वर्ष चालू है, तो अब हमको समय अनुसार क्या पुरुषार्थ करना है, क्या पुरुषार्थ करना है। क्योंकि दुनिया के अंदर भी कहते जैसे जैसे परिस्थितियां बदल बदल करके आ रही ना, तो परिस्थितियां बदल करके आ रही तो समाधान के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं के सामने भी माया, रावण भिन्न भिन्न प्रकार से पेपर लेने के लिए आ रहे, तो समय अनुसार क्या करना है, हमको भी अपनी अंदर की स्थिति को पावरफुल बनाना है, स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो समय अनुसार क्या पुरुषार्थ करें हम, क्योंकि हमारे सामने भी आज कलयुग की दुनिया के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस है ना। सुबह से शाम तक कितने सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे पहले हमको कौन सी पावर चाहिए? कौन सी पावर चाहिए? आध्यात्मिक पावर चाहिए, परमात्म शक्ति चाहिए। लेकिन समय प्रति समय दुनिया का आकर्षण भी इतना बढ़ते जा रहा है, माया भी इतना प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचती जा रही है, और हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक पावर बढ़नी चाहिए वो धीरे धीरे कम हो रही है, बढ़ते जा रही है, कम होते जा रही है। तो अंदर की वो विल पावर को, आध्यात्मिक परमात्म पावर को बढ़ाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? हमको स्व की स्थिति पर अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया, बाबा भी कहते ना, स्व स्थिति है बाबा और परिस्थिति है माया। तो दोनों में पावरफुल कौन है, माया या बाबा? बाबा। तो बाबा देखो, साकार मुरलियों के अंदर भी हर चार लाइन के बाद क्या इशारा देते, बच्चे याद करो, याद करो, याद करो, मामे कम याद करो। बार बार अटेंशन क्यों खिंचवाते? क्योंकि हम सारे दिन में सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? बाबा को ही भूल जाते हैं। और जहां बाबा को भूले तो बाबा की शिक्षाएं भी फिर भूल जाते हैं, और बाबा की शिक्षाएं भूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ सारे दिन में बाबा कहते ना, कुछ न कुछ अवज्ञाएं हो जाती है। और बहुत समय पहले बाबा ने एक साकार मुरली के अंदर कहा था कि हम बच्चों से कम कितने विकर्म होते हैं? कम से कम 25 होते हैं, नहीं होते? होते हैं ना, भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम से कम 20-25 विकर्म हो जाते हैं। अब सोचो, सारे दिन में बाबा को भूलने से हमसे कोई न कोई विकर्म अवज्ञाएं हो जाती तो हमारा हिसाब किताब कैसा होते जा रहा है? हल्का हो रहा है कि भारी हो रहा है? भारी होते जा रहा है। तो बाबा भी समय अनुसार हमको जो इशारा दे रहे, बच्ची क्या करे, अपनी स्व की स्थिति को पावरफुल बनाना है। और स्व की स्थिति को पावरफुल बनाना है तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या करना पड़ेगा? गहन तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। जैसे एक मुरली के अंदर भी बाबा ने वरदान दिया था, और वरदान के अंदर 3 शब्द बाबा ने कहे थे। वरदान के अंदर बाबा ने कहा था, बच्चे सबसे पहले तो तोड़ना है, फिर जोड़ना है और मोड़ना है। अब प्रश्न उठता है, क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है और क्या मोड़ना है? तो क्या तोड़ना है, है ना। बाबा ने कहा सबसे पहले देह अभिमान, फिर देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह से संबंधित जो भी पुरानी बाबा कहते बातें हैं, स्वभाव संस्कार है, उन सबको क्या करो, तोड़ो। जोड़ना क्या है? एक शिव बाबा से हमारा सही कनेक्शन, है ना। आज हम सारी दुनिया से ऑनलाइन रहते, लेकिन बाबा से कितने समय ऑनलाइन है? ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? ऑनलाइन किसके साथ रहना है? बाबा के साथ। तो बाबा ने भी कहा, बच्चे पुराने स्वभाव संस्कारों को, देह देह के संबंधों को, जो भी बातें हैं, तोड़ो और एक शिव बाबा से अपने सर्व संबंधों को जोड़ो। तो हम क्या करते, पहले जोड़ते नहीं है लेकिन तोड़ने का पुरुषार्थ पहले करते। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे पहले शिव बाबा से सारे संबंध जोड़ो, क्योंकि देखो दुनिया के अंदर भी कोई भी संबंध जब जिससे जोड़ते हैं ना, तो हर संबंध से कोई न कोई गुण की अनुभूति जरूर होती है। जैसे आज देखो, किसी को, किसी का पिता ना हो, सारे संबंध हो, तो जीवन के अंदर सुख नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो शिव बाबा कहते, मुझे पिता रूप में याद करो, क्योंकि पिता से क्या मिलती है? शक्तियां। तो शिव बाबा कौन है? कौन है वो? सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो सुबह सुबह बाबा को किस स्वरूप में याद करें? पिता रूप में। माँ से क्या मिलती है? शांति। तो शिव बाबा कौन है? हमारी माँ। और माँ है, माना शांति का सागर है। तो शिव बाबा से दूसरा संबंध कौन सा जोड़े? माँ के रूप में। शिव बाबा हमारा टीचर भी है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। टीचर से क्या मिलती है? शिक्षाएं मिलती है। तो शिव बाबा भी कौन है? ज्ञान का सागर। चौथा संबंध बाबा से कौन सा जोड़ना है? सदगुरु का, क्योंकि गुरु से क्या मिलती है? गति और सदगति। तो शिव बाबा कौन है? पवित्रता का सागर। और शिव बाबा पवित्रता का सागर है तो हमको आकर के वो पति से पावन बनने की विधि बताता है। ऐसे पांचवा संबंध बाबा से जोड़ना कौन सा है? दोस्त का। और दोस्त से क्या मिलती है हमको? सुख मिलता है ना। जो बातें हम माँ बाप से शेयर नहीं करते, अपने साथी से नहीं करते, तो किससे करते हैं? अपने मित्र से करते हैं। तो शिव बाबा कौन है? हमारा खुदा दोस्त, सुख का सागर है वो। और कई बार दोस्ती में देखा होगा कई चीजें माफ कर देते हैं, तो बाबा से भी अगर हमारा दिल का दोस्त, उसको दिल से अगर अपना अच्छा दोस्त बनाया होगा तो हमारी कई कमी कमजोरियों को वो माफ कर देगा। ऐसे बाबा से छठा संबंध जोड़ना है प्रियतम का, क्योंकि साजन से क्या मिलता है? प्रेम। तो शिव बाबा कौन है? प्रेम का सागर। और लास्ट बाबा से जो संबंध जोड़ना वो हमारा बालक है ना, क्योंकि बालक से क्या मिलता है? आनंद। तो शिव बाबा को क्या बनाना है लास्ट जन्म में? हमारा वारिस है ना। सिर्फ बाबा ने कहा मुख का सौदा करने वाले नहीं बनना, लेकिन दिल का सौदा करने वाला बनना है। तो शिव बाबा को सर्व संबंधों से याद करना है। तो एक, पुराने स्वभाव संस्कारों को तोड़ना, शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ना, और मोड़ना क्या है? तीन शब्द है ना, तो क्या मोड़ना हमको? अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को। बाबा ने कहा ज्ञान योग से क्या करना, बाबा मुरलियों में कहते ना हड्डी नरम हो जाएगी, हड्डी नरम होगी माना हमारे संस्कार मुड़ जाएंगे। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाबा भी कहते कि माया भी भिन्न भिन्न रूप से आ रही, जैसे रामायण के अंदर भी दिखाया गया है ना, जैसे दीदी जी भी सुनाते ना, उषा दीदी जी भी सुनाते है कि रामायण के अंदर भी दिखाया गया है कि रामचंद्र जी के जीवन में भी देखो शुरू से आखिरी तक कितने सारे संघर्ष करने पड़े। आज कोई भी बात होती तो हम क्या कहते हैं? बाबा हमारे सामने माया आ गई, यही कहते हैं ना। भाई मुरली सुनने क्यों नहीं आए, तो क्या कहते हैं? माया आ गई। या तो कहेंगे रावण आया, या तो कहते हैं माया आई। लेकिन रामायण के अंदर दिखाया गया है कि राम पहले आया, रावण पहले आया था कि माया आई थी पहले? कौन आया था बोलो, जोर से आवाज नहीं आ रही। माया आई थी। और सबसे पहले माया कब आई थी? रामायण को अगर अपने सामने लेकर के आए, जिसे कहते हैं ना भाई पूरा हमारा जो जीवन है वो किसके ऊपर बना हुआ है? रामायण के ऊपर ही। जैसे ब्राह्मणों का जो जीवन है वो रामायण के अंदर दिखाया गया है, तो रामायण के अंदर भी दिखाया कि रामचंद्र जी के जीवन के अंदर भी जब वो गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे तो वहां सबसे पहले कौन आई थी? माया तारका रूप में आई थी, है ना। फिर वहां से जैसे तैसे आकर के वो अपना राज्य राज के अंदर, उनका राजमहल के अंदर जब स्वयंवर हुआ और जब अपने घर आए वो, तो वहां दूसरे रूप में माया कैसे आई थी? मंत्रा के रूप में आई। फिर वहां उसके बाद जाने के बाद में फिर वो 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था तो वहां पर भी तीसरे रूप में माया कैसे आई थी? कैसे आई थी? सोने के मृग के रूप में आई थी। था तो रावण का ही राज्य ना, लेकिन पहले पेपर लेने के लिए कौन आई? माया आई। माया भी मृग दिखाया गया। उसके बाद फिर सुर्पणखा के रूप में आई, और लास्ट में कौन आया था? फिर रावण आया था। तो वर्तमान समय भी देखा जाए तो किसका साम्राज्य है ये? किसका है? माया रावण का ही साम्राज्य है। तो हम ब्राह्मणों के सामने भी कितनी सारी मायाएं आती है, सुबह से लेकर के शाम तक के, अमृत वेले से लेकर के शाम तक के क्या होती है? माया के भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर आते हैं। और बाबा कहते बाबा की मुरली क्या है? क्या है बाबा की मुरली? हम ब्राह्मण बच्चों की श्वास। इसलिए कहा गया ना जो बाबा की मुरली है वो हमारे लिए क्या है? माया की प्लानिंग। क्या सारे दिन में माया किस किस रूप में आएगी, उसकी प्लानिंग किसके अंदर है? मुरली के अंदर है। इसलिए बाबा किस चीज पर जोर देते हैं? बाबा का प्यार सबसे ज्यादा किससे रहा? ब्रह्मा बाबा का, मुरली से। तो बाबा कहते बच्चों का भी प्यार सबसे ज्यादा किससे हो? मुरली से, है ना। और मुरली और बाबा की याद, दो चीजों पर बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। तो बाबा भी कहते समय अनुसार हमको भी क्या करना, स्व की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। कहते हैं ना भाई, वर्तमान समय वातावरण कैसा है, तमो प्रधान है, नेगेटिव वातावरण है, और नेगेटिव तमो प्रधान वातावरण में स्व की स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने सबसे अच्छी विधि कौन सी बताइए, अपने संकल्पों के अंदर शुद्धता लेकर के आओ। दिखाया ना कि श्री कृष्ण लीला जो दिखाई जा रही था उसके अंदर, तो उसमें दिखाया कि श्री कृष्ण जब पालने में था तो उसके पास में आसुरी शक्ति आई थी, और जैसी आसुरी शक्ति आई थी तो दिखाया था कि उसके पालने के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच दिखाया गया, दिखाया था ना, जो वो आसुरी शक्ति से टकरा करके वापस चली गई थी। ऐसी बाबा भी कहते वर्तमान समय वातावरण दूषित, तमो प्रधानता का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और ऐसे दूषित तमो प्रधानता के वातावरण में स्व की सेफ्टी का साधन क्या बताया बाबा ने, क्या बताया, स्वयं के संकल्पों के अंदर शुद्धता हो, है ना। हमारे प्योर संकल्प जितने होंगे, शुद्ध पवित्र संकल्प होंगे, क्योंकि कहा जाता है एक सोच ही व्यक्ति को उसके कदम रोक देती है, एक सोच ही है जो व्यक्ति को खास भी बनाती है और आम भी बनाती है। तो हमारी सोच कैसी हो, कौन है हम सब खास, बाबा देखो कितने अच्छे अच्छे हमको स्वमानों से हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता, बाबा कहते आप सब बच्चे कौन हो, जितने भी आज इस हॉल में बैठे हुए हम सब कौन है, बाबा के मस्तक की मणियां, बाबा के नैनों के नूर, बाबा के होठों की मुस्कान, बाबा के गले का हार, बाबा के सिर का ताज, बाबा के दिल तक नशीन आत्माएं। देखो स्वमान हमार को बाबा ने याद दिलाया ना, तो बाबा इतने अच्छे अच्छे स्वमानों से हमको रोज हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता है, और बाबा हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ को नहीं देखता, बाबा देखते हुए भी बाबा क्या करता, हमारे भविष्य को देखता है, और हमारा भविष्य का स्वरूप देख करके वर्तमान में हमको क्या करता, अटेंशन खिंचवाता मुरलियों के माध्यम से। बाबा कहते बच्चे, अगर बाबा तो सारे दिन में, बाबा कहते ना वतन में बहुत बड़ी बड़ी टीवी लगी हुई है बाबा के पास भी, और बाबा अगर हर एक बच्चों के अंदर की स्थिति को देखना चाहे तो कितना टाइम लगेगा बाबा को देखने में, एक सेकंड। सारे दिन में क्या सोचते, क्या करते, कैसी भावनाएं, कैसी वृत्ति, कैसे संकल्प, कैसा व्यवहार, कैसी चलन, कैसे हमारे कर्म, हर चीज की एक्टिविटी बाबा कहाँ देखता है, वतन के अंदर। लेकिन बाबा अगले दिन मुरली में नाम लेकर के बताता है, बताता है कि हम क्या करते हैं, अगर बता दे तो क्या होगा, सारे बच्चे भागंती हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं मेजॉरिटी बच्चे, तो बाप है ना, तो बाबा हम बच्चों के अंदर के गुणों को देखता है, अवगुणों को नहीं देखता है, और हमारे अंदर की योग्यताओं को देखकर, भविष्य का स्वरूप देखकर के हमको आगे बढ़ाने के लिए वो उमंग उत्साह से हमारे स्वमान को जागृत करता है। आज मुरली क्या है, बाबा कहते ना मुरली क्या है, हमारे स्वमान को जागृत कर रहा है बाबा, हमारी स्मृति का स्विच ऑन कर रहा है, और स्मृति का स्विच ऑन करके हमको क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो बाबा भी कहते वर्तमान समय स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लेकर के आना है, वो आध्यात्मिक पावर को बढ़ाना है, वो पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना है, सत्यता की शक्ति को बढ़ाना, तब बाबा कहते अंतिम पेपर में हम पास हो सकते हैं। इसे कहते हैं ना भाई, पेपर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया के पेपर और यहाँ के पेपर में बहुत अंतर है। दुनिया के जो पेपर होते हैं वहां पर तिथि तारीख निर्धारित की जाती है, लेकिन बाबा ने कहा इस आध्यात्मिक पढ़ाई का जो पेपर होगा इसके अंदर कोई तिथि तारीख नहीं है, जब भी होगा पेपर कैसे होगा, अचानक होगा। लेकिन ये बाबा ने पहले से बता दिया कि पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है, सब जानते हैं ना पेपर में क्या क्या आएगा, बाबा ने बताया ना क्या क्या पेपर में आने वाला है, बाबा ने पूरा प्रश्न पत्र बता दिया हमको। अब हमको क्या करना है, उस पेपर को पास करने के लिए, पार करने के लिए बाबा कहते बच्चे अपनी अवस्था स्थिति को पावरफुल बनाना है। और शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में चलते तो माया के इतने कड़े पेपर नहीं आते जितने पुराने होने के बाद आते है ना। शुरू शुरू में जब बाबा के ज्ञान में चलते बड़ा उमंग उत्साह रहता तो स्थिति भी कैसी रहती है हमारी, सतो प्रधान। लेकिन जैसे जैसे 2 साल 4 साल 6 साल 10 15 साल होते जाते तो स्थिति कैसी होती, पावरफुल होती है, कैसी होती है। आप जब सबसे पहले बाबा से मिलन मनाने आए थे तब अवस्था स्थिति कैसी थी, और आज अवस्था स्थिति कैसी है, अंतर आ गया ना, अंतर आया ना। समय के हिसाब से हम भी कैसे हो गए, थोड़े से कमजोर होते जा रहे। लेकिन बाबा कहते बच्चे समाप्ति वर्ष चालू है, तो हमको भी क्या करना है, अपनी आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। और बाबा कहते दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बढ़ते जाएगी, चारों तरफ का वातावरण भी दूषित तमो प्रधानता का बनते जाएगा, तो बाबा कहते पुण्य का खाता बढ़ाते जाओ। और पुण्य का खाता जितना बढ़ते जाएगा तो बाबा कहते हमारे पाप कर्मों का बोझ हल्का होता जाएगा। क्योंकि आज देखो हमारे सामने बीमारी के रूप में भी कितने सारी बीमारियां भी आ रही शरीर की, बच्चे बूढ़े जवान सबके आगे क्या कहते, कोई ना कोई बीमारी जरूर है। तो तन के द्वारा भी पेपर आ रहा है, मन से भी दुखी होते जा रहे हैं, संबंधों से भी दुखी हो रहे हैं, साधनों से भी दुखी हो रहे हैं, प्रकृति से भी दुखी होते जा रहे हैं, और कई बार तो हम अपने आप से भी दुखी हो जाते हैं। तो सबका कारण क्या है, हमारे अंदर जो पुण्य का खाता जमा था बाबा कहते वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो बाबा कहते समय प्रति समय हमको क्या करना है, समय के अनुसार अपने अंदर बाबा कहते पॉजिटिविटी लेकर के आना है, और साथ साथ पुण्य का खाता बढ़ाते जाना है ना। छोटे छोटे सत्कर्म करते करते एक दिन इतना बड़ा सत्कर्म हो जाएगा जो बाबा कहते आपके सामने कोई भी परिस्थिति जब आती है तो कहते ना पुण्य का खाता आड़े आ जाता है। इसलिए कहा जाता भी कौन सा पुण्य था जो आड़े आ गया। तो शिव बाबा भी हमसे कल जब बाप दादा से मिलन मनाएंगे तो बाबा कहते बच्चे अपनी आंतरिक स्थिति को अवस्था को पावरफुल बनाएंगे, तो बाबा भी वतन से हमको कुछ अनुभव कराएंगे, और साथ साथ बाबा कहते बच्चे कुछ न कुछ गिफ्ट भी देना है, लेन देन होगी ना। तो क्या बाबा को गिफ्ट देंगे, ऐसी स्थूल चीजों की लेन देन की तो बात बाबा करता नहीं है, तो कौन सी चीजों की लेन देन करनी है। क्योंकि भगत आत्माएं भगवान के ऊपर क्या चढ़ा रही है, क्या चढ़ाएगी शिवरात्रि के दिन, अक बेल धतूरा है ना, बेलपत्री, नारियल, वो भी कौन सा खराब निकल गया तो कहते प्रभु ने अर्पण कर लिया, और अच्छा निकला तो खुद खा जाएंगे। तो भगवान को अक बेल धतूरा भगत आत्माएं चढ़ा रही, लेकिन हम तो बाबा कहते विवेकशील भगत है ना, सबसे बड़े भक्त तो कौन है, हम बच्चे जिन्होंने पूरा जीवन शिव बाबा को समर्पित किया। तो बाबा कल इस धरा पर आए तो बाबा जब सब बच्चों को एक साथ दृष्टि देगा तो हम भी एक कोई पावरफुल संकल्प करेंगे कि बाबा आज से मेरा ये अवगुण, मेरा ये संस्कार, क्योंकि सब जानते हैं हमारे अंदर कौन कौन सी बुराई है, सामने वाले को बताने की आवश्यकता नहीं, जानते हैं ना अपने अंदर कौन कौन से अवगुण है, कौन कौन सी खामियां है, कमियां है, हम हर एक अपने आप को अच्छे से जानते हैं। तो कल शिव बाबा को कुछ न कुछ अपने अंदर के एक बुराई का, अवगुणों का शिव बाबा को दान जरूर करना। भगवान के घर में आए ना तो दादी जी भी क्या कहते, भाई यहाँ से जा रहे हो तो क्या लेकर के जा रहे हो और क्या छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्या लेकर के जाना बाबा के घर से, क्या लेकर के जाना है, अशांति या शांति, और छोड़कर क्या जाना है, अशांति या हमारे अंदर का जो भी एक अवगुण है वो शिव बाबा को देकर के जाना है। तो बाबा भी कहते बच्चे सच्चा लेन देन करना है, क्योंकि बाबा से गिफ्ट लेना भी है और बाबा को गिफ्ट देना भी है। तो कल की जो वाणी चलेगी वो समझना कि शिव बाबा सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आएगा, और बाबा मुझसे मिलने के लिए आएगा तो बाबा की जो शक्तियां है, जो वरदान है, जो बाबा की सर्व प्राप्तियां है, वो किसके लिए है, सिर्फ मेरे लिए है, है ना। तो भले कोई पहली बार बाबा से मिलन मनाने आ रहे, चाहे पुराने जितने भी पुराने हो, लेकिन बाबा कल हमसे मिलने जरूर आएंगे। तो हमको भी क्या करना, अपनी आंतरिक स्थिति को, अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी मैं। जैसे कई बार हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बनते तो उमंग उत्साह तो रहता है कि भाई बाबा की बातें किसी न किसी को सुनाए, लेकिन कई बार किसी को हम ज्ञान की बातें सुनाते तो कहते भाई आपके यहाँ फलानी जगह भी तो ज्ञान में चलते, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, और सब आपके जैसे बन जाएंगे तो फिर दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी, और इतने सारे आप लोग इतना काम कर रहे, फिर दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार, पापाचार, अधर्म, आतंकवाद क्यों बढ़ते जा रहा है? ये प्रश्न आता ना सबके सामने। लोग अच्छाइयों को नहीं देखते, लेकिन क्या देखते हैं कि आप दुनिया वालों के लिए क्या कर रहे हैं। फलानी संस्था ने फलानी जगह ये काम किया, ये किया, आपकी संस्था क्या कर रही, ये क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो एक बार बहुत अच्छा ज्ञानमृत के अंदर एक अनुभव आया था, एक कहानी के माध्यम से माना, प्रैक्टिकल बताया था। कहते कोई साबुन की फैक्ट्री वाला कोई मालिक था, जिसके फैक्ट्री में बहुत सारे साबुन बनते थे, हजारों लाखों, चारों तरफ जाते थे, वो बहुत संपन्न व्यक्ति था। अब पता चला कि उस फैक्ट्री के अंदर एक महात्मा जी आए उस मालिक से मिलने के लिए, जो साबुन बनाने वाला मालिक था। और उस महात्मा जी ने बहुत सारे जगह जाकर के अपना सत्संग किया, बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत अच्छे अच्छे भगवान की बातें सुनाई, और सुनाते सुनाते वो उस मालिक के पास पहुंचा। तो मालिक थोड़ा सा नास्तिक प्रवृत्ति का था, तो उसने ध्यान से उस बात को तो सुना कि अच्छा काम कर रहे हो आप, ये कर रहे हो, लेकिन लास्ट में कहा कि इतनी मेहनत करने से, इतना ज्ञान देने से, इतना उपदेश देने से क्या मतलब, दुनिया के अंदर सुधार हो नहीं सकता, क्योंकि देखते जा रहे भ्रष्टाचार, पापाचार, अधर्म, आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन सुधार नहीं होते जा रहा है। तो क्या मतलब आपको इतनी मेहनत करने से? महात्मा जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने ध्यान से उनकी बात सुनी और लास्ट में कहा कि जो गेट के ऊपर एक जो आपका वो वॉचमैन खड़ा हुआ है ना, ऐसा लग रहा था कि उसने आपके यहाँ तो बोले नहाने के साबुन बनती है, लेकिन ऐसा लग रहा कि उसने नहाया नहीं है है ना, उसने नहाया नहीं, बदबू आ रही थी बोले। तो उस मालिक ने कहा भाई मेरा काम है साबुन बना करके बेचना, अब उस साबुन का प्रयोग करना या ना करना किसके ऊपर है, उस व्यक्ति के ऊपर है। तो महात्मा जी ने कहा भाई मेरा भी तो यही काम है क्या कर रहे हैं, दूसरों को जाकर के ईश्वरी संदेश सुना रहे हैं, आध्यात्मिकता के रास्ते से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, अब उस ज्ञान को जीवन में लाना ना लाना किसके ऊपर है, उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि जो लाएगा उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, है ना। तो कहने का भावार्थ यही है कि अगर हमसे कोई इस बारे में ऐसी बातें पूछे तो हमको भी क्या करना है, कोई ऐसी बातों का जवाब थोड़ा सा सरल शब्दों में दो, ताकि सामने वाला भी सोचने लग जाए। नहीं है जैसे कहते हैं भाई ब्रह्मा कुमारी इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, पूछते भी है। तो जैसे एक हलवाई के पास में उसके पास टैलेंट है कि भाई हलवा कैसे बनाया जाता, मिठाई कैसे बनाया जाता है, तो भगवान भी आकर के मन को स्वस्थ बनाने की विधि बता रहा है, लेकिन जो उस विधि को सीख करके प्रैक्टिकल में लाएगा उसके जीवन के अंदर क्या होगा, परिवर्तन आएगा, वही सशक्त बन पाएगा। अब विधि तो बहुत सारे लोग सीख करके जाते हैं, बाबा से भी मिलन मना करके जाएंगे, कई बार परिवार वालों को भी लेकर आते, भाई मधुबन जाने के बाद परिवर्तन आ जाएगा, बाबा का बच्चा बन जाएगा, लेकिन नहीं बन पाते, होता है ना कई बार ऐसा, यहाँ से जाने के बाद फिर क्लास में भी नजर नहीं आते तो सोचते फालतू मधुबन ले गया इनको, लेकिन बाबा ने कहा एक बार ज्ञान का बीज बोया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बस बीज बोने का काम करते जाओ, बाबा कहते समय अनुसार पानी मिलेगा तो बीज पुनः अंकुरित हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।